नमो ताहि जाति भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। पिछले कई दिनों से अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए श्रद्धा जरूरी है, उस श्रद्धा पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में अगर अपन अपने जीवन के अनुभव से भी सीखें तो समझ में आता है, स्पष्ट होता है कि बिना विश्वास के जैसे संसार में एक कदम भी चलना मुश्किल होता है, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बिना श्रद्धा के एक कदम भी चलना संभव नहीं है। इतनी कीमती है ये श्रद्धा। श्रद्धा कब होगी, कैसे होगी, ये तो अपन नहीं जान सकते। क्या प्रयत्न किया जाए, कितना भी प्रयत्न करें, कहा नहीं जा सकता कि श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को श्रद्धा के लिए तैयार कर लें। जैसे कि पानी कब गिरेगा, बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? पानी वहीं गिरेगा जहां की लो प्रेशर के एरिया डेवलप हो, कम दबाव का क्षेत्र जहां पर बनता है, जैसे वहां पानी गिरता है, ऐसे ही जब हमारे भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम होता है, आसक्ति और अहंकार घटता है, तब अपने आप अपने भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकता है, अहंकार पूर्वक भी कर सकता है, आसक्त रहकर के भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसे दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है। जब उसके भीतर से अहंकार या कि मैं और मेरेपन का भाव, आसक्ति, कर्ता भोक्ता और स्वामीपने का भाव जितना जितना कम होता जाता है, उसके भीतर श्रद्धा उतनी ही आसानी से आती चली जाती है। हम श्रद्धा के लिए प्रयत्न करें और किसी बाहरी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, आंख बंद किए हुए था, लोग बहुत आश्चर्य में थे कि भाई रास्ते के किनारे बैठा है, इसका मतलब है कि इसको चलना तो होगा। लोगों ने पूछा कि भाई चलना है कि यहीं बैठोगे? उसने कहा नहीं, मुझे बहुत सी यात्रा करनी है। तो कब करोगे यात्रा? बोले बहुत आसान सी चीज है, जब सूरज की रोशनी होगी तब मैं अपनी यात्रा करूंगा। सूरज की रोशनी उस समय आई नहीं थी, तो लोगों को बड़ी लॉजिकल लगी बात कि ठीक कह रहा है, अंधेरे में थोड़ी चला जाएगा, सूरज की रोशनी होगी तो चलेंगे। तो ये सूरज की रोशनी कब होगी? सूरज की रोशनी तो बाहर हो चुकी है, तुम आंख तो खोलो। उसने कहा नहीं, जब सूरज की रोशनी होगी तब आंख खोलेंगे। पता कैसे लगेगा कि सूरज की रोशनी हुई कि नहीं? ऐसे ही अपने साथ मुश्किल है। हमारे भीतर जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तब हम दूसरे काम मोक्ष मार्ग पर चलने के करेंगे। ऐसा आग्रह अपन करते हैं वह भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा अहंकार कि मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के प्रति श्रद्धा रखता हूं इसलिए मेरे भीतर तो सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता आ ही जाएगी, ऐसा अपने अहंकार को भी जब तक अपन नहीं घटाएंगे और जब तक बाहरी चीजों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं घटाएंगे तब तक अपने जीवन में जो वास्तविक श्रद्धा है वो कैसे उत्पन्न होगी? राजसिक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, होती है अधिकांश लोगों के अंदर, तामसिक श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, लेकिन जो वास्तविक सात्विक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा अपन ने पहले भी समझा था कि अपन आलसी होकर बैठ जाते हैं, खुद तो कुछ कर्म नहीं करते। समय आएगा और अपने आप श्रद्धा हो जाएगी, यह कि भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा है भगवान ही सब कुछ कर देंगे, हमारा कल्याण भी कर देंगे। ऐसे आलसी व्यक्ति के द्वारा की गई श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है। अधिकांश मौकों पर अपन यही कहते हुए पाए जाते हैं कि हम क्या करें, जैसो भगवान ने चाहो तो वैसे ही भाव। अरे भगवान ने कहा चाहो तो तुमने जो कछु चाहो तो वो उनने देख लाओ तो पे लें, इतना ही भर है और कछु नहीं। तुम्हारे उपादान में जैसी योग्यता थी वैसा ही तो कार्य हुआ, कि भगवान के चाहने से हुआ या भगवान के देखने से हुआ, लेकिन क्या करें, अपन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी से हमारा कमिटमेंट जब होता है तो हम उसकी राह देखते हैं, ऐसे ही जैसे किसी से अपना कमिटमेंट हुआ हो कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो आएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने साथ लेके जाएगा। भैया ऐसा किसी से तय तो है नहीं अपने जीवन में, अपन ने किया है कि वो आएगा और तब अपना काम हो जाएगा। ठीक इसी तरह रास्तिक श्रद्धा होती है कि खुद तो कुछ पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, लेकिन अपन कहते हुए ये पाए जाते कि नहीं हमारी तो वैसे इच्छा नहीं है, मनो सब जने कह रहे हैं और फिर ऐसा ही इच्छा भगवान की ऐसा ही हुई है, तो अब का सामायिक नियति यही ऐसा ही है, हमें अध्यक्ष बनने हुई है तो हम बन रहे, हमारी इच्छा नहीं है, हमें राष्ट्रपति बनना है तो हम बन रहे, हमें प्रधानमंत्री बनना है हमें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं, सब जने हमें कुर्सी बिठा रहे, वो चाह रहे हैं सो बैठे जाते, हमें तो भगवान पे बहुत श्रद्धा है, अगर भगवान चाहेंगे तो हमें तो हम तो कुर्सी बैठ जाएंगे बिना प्रयत्न के। अपनी महत्वाकांक्षाएं अपन पूरी कर लेते हैं अपने भगवान के प्रति श्रद्धा कह करके। चोर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और भगवान के सामने निवेदन करता है कि जरा चोरी ठीक ढंग से हो जाए, ये क्या चीज है, क्या ये श्रद्धा सच्ची है? अपने आत्म कल्याण और कर्मों की निर्जरा के लिए जो मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिसमें कुछ चाहता नहीं हूं संसार बल्कि संसार मिटाना चाहता हूं, वास्तविक श्रद्धा वो है। क्या ऐसी श्रद्धा अपने भीतर है? टटोल करके देखना चाहिए, अगर नहीं है तो शेष जीवन में उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो सुकमाल मुनि महाराज बन गए थे, लेकिन जब तक घर में थे तब तक क्या दृष्टि थी? शरीर पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर। उनके लिए सरसों का दाना भी चुभता था, आंसू आ गए थे जब उनकी दीप से आरती उतारी गई, जब उनको खाने के लिए चावल रखे गए तो उसमें से चुन चुन करके जो मुलायम चावल थे, शाली धान्य थे, उन्हें ही उन्होंने खाया। तो राजा के मुंह से निकल गया कि अपने बेटे का तुम इलाज करवाओ रानी मां, तुम्हारा बेटा तो अस्वस्थ लगता है। कि लेनी अस्वस्थ नहीं है, सुकुमाल है। लेकिन एक समय वो आया जब उनके ही पिता जो मुनि बन गए थे, सुबह से भगवान की स्तुति में कुछ पद पढ़ रहे थे, उन पदों की ध्वनि उनके कान में सुनाई पड़ी और दृष्टि बदल गई। और दृष्टि बदलते ही साथ धोतियां साड़ियां बांध करके खिड़की में से नीचे उतरे और नंगे पैरों से खून बह रहा है और चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनि दीक्षा लेने के बाद 3 दिन तक एक स्यालनी अपने दोनों बच्चों के साथ पैरों का भक्षण करती रही, लेकिन कहां है उस तरफ ध्यान। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला था शरीर, चरम शरीरी थे, उसी भाव से उनको मुक्ति हुई, उनका ध्यान आत्मा की तरफ चला गया। पहले उसी शरीर से और सरसों का दाना चुभ रहा था, कहां गई थी वो अनंत शक्ति। दृष्टि नहीं मिली थी, जैसे ही दृष्टि बदली वैसे ही शरीर में तो शक्ति थी, ऐसे ही अपने साथ भी है। अपने लिए भी व्रत नियम संयम करने की बहुत सामर्थ्य, अपना कल्याण करने की अनंत शक्ति है आत्मा के भीतर, लेकिन जब तक अपने भीतर सच्ची दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक वो सारी शक्ति अपने भीतर ही पड़ी है, अपन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भैया कोशिश करना चाहिए अपनी दृष्टि को समीचीन बनाने का, जिससे कि अपने आप मोक्ष का मार्ग कैसा है ये सूझने लगेगा। बताने से समझना ज्यादा जरूरी है, बताने और समझाने से कार्य नहीं होगा, हिसाब किताब से कार्य नहीं होगा, शर्त सहित नहीं होगा, कोई तर्क नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ अपने भीतर ऐसा विश्वास कि मेरे आत्मा का कल्याण मुझे करना है, इस तरह का विश्वास सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में बैठ करके अपने भीतर जागृत हो। वरना अपन तर्क वितर्क में ही पड़े रहते हैं, बहुत सारा ज्ञान उलझने वाला ज्ञान, तर्क वितर्क में उलझाने वाला ज्ञान भी अगर अपने पास हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसी दृष्टि वैसी निर्मलता अपन को प्राप्त हो जाए जैसी कि सम्यक दर्शन के योग है। एक मास्टर साहब थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पढ़ाते भी थे बच्चों को, गणित के प्रोफेसर थे वो, बुरा नहीं मानना कोई गणित में प्रोफेसर वगैरह कोई बैठे हो अगर, तो वो थे मास्टर, इसलिए हमने मास्टर साहब कहा। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते थे, वो गणित पढ़ाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अब घर के सब बच्चों को जीवन साथी को भी पिकनिक के लिए चलें। नदी के उस पार उनका मन हुआ कि पिकनिक के लिए चलेंगे, उनके गांव के बाहर से नदी बहती थी, वही पिकनिक का स्पॉट। वैसे पिकनिक शब्द अच्छा नहीं है, अपन लोगों ने प्रचलित कर लिया है, अंग्रेजी शब्द है पिकनिक और उसका हिंदी में अर्थ होता है वन भोज, जंगल में जैसे जंगली जानवर शिकार करके और 4-5 जने इकट्ठे खाने बैठ जाते हैं, उसका नाम है पिकनिक, जो अपन ने डेवलप कर लिया है। जंगल में किए जाने वाला जंगली जानवरों का भोजन है और कुछ नहीं, लेकिन अपन बड़े खुश होते हैं कि साहब पिकनिक पे जा रहे हैं। वो लोग भी पिकनिक पर जा रहे थे, तो अब नदी के किनारे पहुंचे, नदी पार करना थी, अब पैसा को दे, में पैसा तो थे नहीं, उनने की काय बेकार में पैसा खर्च करो, हमने इतनी गणित पढ़ी है कभी काम आया है, हम देख लेते हैं नदी की गहराई कितनी है, अपन आसानी से निकल सकते कि नहीं, और सब लोगों की ऊंचाई कितनी है, क्लियर हो जाएगा कि भाई अपन डूबेंगे नहीं। सो उनने सबकी हाइट नाप ली, उसका एवरेज निकाल लिया, और जाकर के नदी जहां गहरी थी, कम गहरी, ज्यादा गहरी, सब नाप लिया, उसका भी एवरेज निकाल लिया। गणित में तो माहिर थी, तो जब उनका हिसाब निकला तो देखा कि ले नहीं, अपन सबकी मिला करके हाइट का एवरेज ज्यादा है, नदी की गहराई से चलो कोई नहीं डूबेगा, चले। अब जीवन साथी ने कहा कि वो छोटा सा जो 3 वर्ष का बेटा है उसकी तो कंधा तक पानी आ गया, क्या कर रहे हो तुम, तो कह रहे थे कि कोई नहीं डूबेगा। उनको भी बहुत लगा, कहने नहीं हमारा गणित गलत नहीं हो सकता, फिर से कर लेता हूं। उनने फिर से गणित लगाया, नहीं उस चिल्ला के कहा कि नहीं चले जाओ, सब जने चलते चलो, कोई हर्जा की बात नहीं, कोई नहीं डूबेगा, हमारा गणित बिल्कुल सही है। क्या स्थिति बनी, कुछ दिन, कुछ थोड़ी देर और चलने के बाद जहां गहरा पानी था वहां तो डूबने की नौबत आ गई। अपन भी कैसा करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। उस पर तो हंसी आती है कि देखो तो उस गणित का क्या उपयोग हुआ, उस ज्ञान का क्या उपयोग हुआ जो कि संसार में डूबने के लिए हमें अपना सहयोग करता है। बताइए अपने पास भी कितना ज्ञान है, कौन सा ज्ञान जो कि हमें संसार में ही रुलाने के लिए, संसार में ही डूबने के लिए कारण बनता है। अपने पास है थोड़ा सा ऐसा ज्ञान जो हमें संसार से पार करने में सहयोगी हो जाए, जहां शर्त नहीं चलती, जहां तर्क नहीं चलते, जहां सहज भाव से अपने 7 तत्वों के प्रति जो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, भले ही हम नहीं जानते उन 7 तत्वों का स्वरूप, लेकिन श्रद्धान है कि हां यही मेरे कल्याण के लिए कारण है। ऐसा श्रद्धान आता है कि अपने भीतर आना चाहिए भाई। एक बार श्रद्धान अगर आ जाए तो ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। जिंदगी भर भी अपन प्रयास करें तो अपन को इसी श्रद्धान के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर की चीजें मिल जाने के बाद भी अगर ये चीज नहीं मिली तो व्यर्थ है। अज्ञेय जी ने अपने संस्मरण में लिखा, सच्चिदानंद वात्स्यायन उनका नाम था, अज्ञेय कहने लगे थे उनको, मिलते बहुत कम थे, कहां है यही पता नहीं रहता था, तो लोगों ने धीरे धीरे कहने लगे तो अज्ञेय हैं, उनका पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे, ऐसा नाम रख दिया था। बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उनके जीवन का संस्मरण, वो एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए तो वहां पर जाते समय रास्ते में एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि देखो उस समय ऐसे इंटरनेट वगैरह और आवागमन के साधन तो थे नहीं, आदमी से ही अपना काम चलाते थे लोग, सुकेन ले तुम आगे गांव में जा ही रहे हो और हमारे मित्र हैं वहां पर, उनका कुछ पैसा देना है सो तुम दे देना, हम तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, 3000 रुपये उस समय सन 30 में क्यों वैल्यू थी 3000 की, आज की 3 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। 3000 रुपए उनके हाथ में दे दिए, ना लिखा पढ़ी, ना अंगूठा लगवाओ कि हमने दए तुम्हें, और तुम दे दी होते हम उनसे भी फोन करके पूछें कि दए के नहीं, इतना अविश्वास आज डेवलप हो गया उस ज्ञान के चलते। ज्ञान ने हमारे भीतर अविश्वास पैदा किया या कि विश्वास, बिना किसी लिखा पढ़ी के 3000 रुपए देने वाले ने दे दिए और रखने वाले ने भी पॉकेट में रख लिए और चले मोटर में, बस में। बस चालू होने वाली थी उतने में एक 10-11 वर्ष का बेटा भागते हुए हांफते हुए आया और उसने अज्ञेय जी से कहा कि अंकल वो जो हमारे मालिक ने आपको 3000 रुपए दिए ना, वो देना नहीं है वहां पर, वो वापस मंगाए हैं उन्होंने। ठीक है, मंगाए हैं वापस, नहीं देना तुमने कहा था देना, इसलिए मैंने रख लिए थे, नहीं देना है तो ले लो अपने वापस, निकाले 30,000 रुपए और उस 11 वर्ष के बेटे के हाथ में सौंपे जय जिनेंद्र। लेकिन जितने लोग देख रहे थे इस क्रिया को भी सब चिल्ला पड़े, क्या करते हो, गए भी तो पानी में 3,000 ने जा पूछी के कौन किरण का आओ, कौन ने मंगाए हैं, का है का नहीं है। इतना विश्वास कर लिया आपने उस 11 वर्ष के बेटे पर, 3,000 रुपए ऐसे ही दे दिए, गए वो तो डूब गए। अज्ञे जी ने इतना सब सुनने के बाद बड़ी माने उपदेश लोगों ने 15 मिनट तक उनको दिए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि यदि मैं आज 3,000 रुपए के पीछे, मैं 3,000 रुपए में एक एक पाई कमा करके भी चुका दूंगा, लेकिन यदि इस 3,000 रुपए के पीछे अपना विश्वास खो देता तो शायद जिंदगी भर मुझे विश्वास प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ विश्वास है जिससे कि ये संसार और संसार से पार होना दोनों ही आसान है। लेकिन अपन तो संदेह कर लेते हैं एक एक चीज में, मोक्ष मार्ग जो बताया आचार्यों ने उस पर भी संदेह हो जाता अपन को कभी कभी, का पता है सही के नहीं है। अपनों तो जो अच्छो है, दुकान खुली है, पैसा कमा रहे हैं अपन, और घर गृहस्थी है वो ही अच्छो है, इनमें कब का धरो, वैसे ही तो दुखी है जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और अपन कायकों में फंसो, ऐसा भाव आ जाता अपने भीतर की नहीं है श्रद्धान या संदेह है विश्वास नहीं। अपन को देखना चाहिए कि हमारी इन क्रियाओं के द्वारा तो यही प्रदर्शित हो रहा है, हम भले ही गीत गाएं श्रद्धान के और विश्वास के, लेकिन मैं अपने भीतर कितना अविश्वास और कृतता अश्रद्धा भाव लेकर के और अपना जीवन जी रहा हूं। भाई अपन को ऐसा विश्वास जो संसार में अपन बना के चलते हैं उसे ही थोड़ा बदल करके और सच्चे देवगुरु शास के प्रति, उनके द्वारा कहे गए सात तत्वों के प्रति वैसा ही अनुराग हो, जिससे अपना अनुराग होता है वो कि सब बातें मनत है, सब सुनत है कि नहीं सुनत, ये बताओ आप, सामान्य सी चीज है, जिससे जितना अनुराग होगा जितना लगाव होगा उसकी बात टाल नहीं पाएंगे। देखो ऐसा अपन संसार में देखते हैं, लेकिन अपना सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग है, प्रेम भाव है, लेकिन उनकी कितनी बातें मानते अपन, कितनी टालते रहते, बताइए जिन वाणी में क्या चीज भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या प्रयोजन वाण है क्या प्रयोजनी है क्या अप्रयोजनी है, ये सब अपन को बता दिया। भगवान की वीतरागता अपन को रोज उपदेश देती है कि भैया लड़ो झगड़ो ने राग द्वेष ने करो, देखो हम कैसे बैठी वीतरागी, ये संदेश रोज दे रहे हैं, उनके प्रति अपना अनुराग भी है, लेकिन जरा गौर करें कि क्या वास्तविक अनुराग है, ये वास्तविक अनुराग होता जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी कलाकार, फिल्म के कलाकार से बहुत अधिक अनुराग हो, जिसको वो अपना फेवरेट मानता हो, उसी के जैसे कपड़े पहनेगा, उसी की जैसी टोपी लगाएगा, उसी के जैसे हेयर स्टाइल, उसी के जैसे चलना फिरना सब कुछ करता कि नहीं, बताओ। लेकिन अपन अपना यदि भगवान के प्रति अनुराग है तो थोड़ी देर को तो भगवान जैसे बनने की नकल तो करें, लेकिन उतना भी नहीं अपने जीवन में आ पाता है, उतनी वीतरागता भी नहीं आ पाती है कि हाँ थोड़ी देर तो हम दिन भर में इस राग द्वेष के प्रपंच से बच करके वीतरागता का अनुभव करेंगे। भैया अपन तो सिर्फ इतनी ही तैयारी कर सकते हैं कि अपने भीतर मैं और मेरेपन का दबाव कम हो, जिससे कि श्रद्धा आपो आप उत्पन्न हो, बाकी तो सब ये समझने और समझाने की चीजें हैं, श्रद्धा अपने आप रिस्पॉन्स देती है, जिसके भीतर श्रद्धा है उसे अपने आप बहुत सारी चीजें जैसे कि निश्चिंतता, तन्मयता, दृढ़ता, ये सब आपो आप मिलने लगती हैं, जिनके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भीतर दृढ़ता आवे, हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमारे भीतर कंसंट्रेशन तन्मयता बढ़े, हमारे भीतर निश्चिंत होकर के जीवन जीना आ जावे, लेकिन ये सब चीजें श्रद्धा के आने पर ही मिलती हैं। देखो सुदामा के पास जब कुछ नहीं था उस समय चावल बांध करके और श्री कृष्ण के पास गए थे। थोड़े से चावल हैं लेकिन श्रद्धा बहुत है, उस श्रद्धा का रिस्पांस मिला और वो चावल स्वर्ण के हो गए और उनके लिए कितना लाभ हुआ, चावल की वजह से हुआ जी नहीं। हमारे भीतर जो श्रद्धा थी उसका हमें अपने आप रिस्पांस मिला। अपन देखते हैं सामान्य रूप से भी व्यक्ति देखते हैं, किसी को कमती किसी को अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, सो कम और ज्यादा लाभ दिखता जरूर है लेकिन श्रद्धा कम और ज्यादा जिसकी जैसी होगी उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अपन ये देख करके कि इनसे ज्यादा है, महाराज जी को इन पे आशीर्वाद ज्यादा है, इन पे कमती है, इनको ज्यादा चाहत इनको कमती चाहत, ये भैया अपने भीतर की श्रद्धा देखो पहले कि किसके भीतर कितनी श्रद्धा है उसको उतना ही रिस्पांस मिलेगा, अपने आप मिलेगा, कोई देता वेता नहीं है। अपन तो प्रणाम बाद में करेंगे, पहले जा देखेंगे कि आशीर्वाद दे रहे कि नहीं, नमोस्तु महाराज ले पहले आशीर्वाद चाहने की अपनी नमोस्तु निवेदित करो, सो नहीं नमोस्तु तो हम बाद में करेंगे, पहले आप आशीर्वाद दे रहे कि नहीं। अपन फल पहले चाहते हैं, अपना कर्म बाद में, अपनी श्रद्धा बाद में व्यक्त करेंगे, लेकिन श्रद्धा का क्या फल होता है ये हमें पहले चाहिए। भैया श्रद्धा फल देती है लेकिन वास्तविक श्रद्धा हो तो अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि अपन को भी ऐसी श्रद्धा जिसका कि अपन फल चाहते हैं अपने जीवन का कल्याण, वैसी श्रद्धा अपन को प्राप्त हो। एक छोटा सा उदाहरण है, कितना विश्वास संसार में होता है, कई बार सोचता हूं कि ऐसा विश्वास ऐसी श्रद्धा अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति क्यों नहीं उमड़ती है। बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने का मन तो हो जाएगा, अपने मन का नहीं होगा, सो कि ऐसो है उनसो है जो ठीक नहीं है वो फलानो है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका अपन जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे। श्रद्धालु होगा तो ही श्रद्धा की आंख से देख करके उसमें दोष ना देख करके अच्छाइयां देखेगा। अभी हम रास्ते से जा रहे थे तो हमने यही बात कही कि देखो वीतराग मुद्रा एक ही है लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहा है, कोई व्यक्ति वीतराग मुद्रा देखकर अपना मुंह इस तरफ कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजा कर रहा है, जा रहे हैं, एक ही मुद्रा है तो मुद्रा वीतराग, लेकिन उस मुद्रा के माध्यम से किसी को घृणा ईर्ष्या और द्वेष का भाव आता है और किसी को अनुराग उत्पन्न होता है और श्रद्धा उत्पन्न होती, हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाता, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। ये क्या चीज है, ये अपने भीतर के भाव हैं, जिसने जिस प्रकार के भाव बनाए जैसी श्रद्धा प्राप्त करी उसको बाहर वैसा ही दिखेगा, अच्छा या बुरा। क्या हुआ, पानी का जहाज चलता था, उस पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, भाई बहन थे दोनों, माता पिता नहीं रहे थे उनके, भाई थोड़ा नटखट था, बहन थोड़ी बड़ी थी समझदार थी, तो दोनों जन यात्रा जहाज में महीनों से कर रहे थे। अचानक जहाज में हल्ला हुआ, अनाउंस हुआ कि भाई तूफान बहुत तेज है, जहाज के डूबने का अंदेशा है, सब लोग अपने अपने भगवान को याद कर लो, ऐसे समय पर तो अब जबकि विपत्ति सामने है। बहन सुनकर के घबराई, उसने आजू बाजू देखा, भैया तो कहीं पर नहीं है, उसको सुरक्षा का भाव, अपनी सुरक्षा से ज्यादा उसको भाई की सुरक्षा की चिंता हुई, खोजने निकल गई वो जहाज में कहां है भाई, तो देखा तो वो डेक के ऊपर आराम से सो रहा है, लेटा हुआ है, जाकर के उसके पास उसको हिलाया, तुमने अनाउंस नहीं सुना क्या, उसने पूछा कि कौन सा अनाउंस, वही जहाज डूबने वाला अनाउंस जो हो रहा था। अरे तो तुमने इसका मतलब सुना है? बोले हाँ मैंने सुना है। बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? जहाज डूब सकता है, इतनी विपत्ति आ गई है, भगवान का भी नाम नहीं ले रहे हो, आराम से लेटे हुए हो। तो वो फौरन उठा और पास में पड़ी हुई रस्सी में फंदा लगाने लगा। तो बहन बोली कि तू अभी भी इतना बड़ा हो गया लेकिन नटखट है, अभी भी इतनी विपत्ति है और तुझे ये सूझ रहा है? कुछ नहीं बोला भाई उसने, फंदा लगा करके और देखते देखते बहन के गले में फंदा डाल दिया और डाल क्या दिया, उसको कसना शुरू कर दिया। लेकिन बहन हंसती चली जा रही है, क्या कर रहे हो तुम, इतनी विपत्ति के समय भी तुम्हें हंसी सूझ रही है, ऐसा कह रही है। और कसता जा रहा है फंदा। भाई पूछता है बहन से कि तुम्हें डर नहीं लगता, मैं अगर फंदा जोर से कस दूं तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे? बोले वो इसमें डरने वरने की क्या बात, तू मेरा भाई है, मेरे प्रति बहुत अनुराग रखता है, तू मुझे काय को मारेगा, मेरे गले में फंदा काय को कसेगा? बोले बस यही सुनना चाहता था मैं, मेरा भी भगवान के प्रति श्रद्धान है, जैसे कि तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धान और अनुराग है कि मैं मार कैसे सकता हूं, ऐसा ही मेरा भी भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग और श्रद्धान है कि मेरी आयु जब तक नहीं आई है कोई मुझे यहां मार नहीं सकता, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जहाज डूब जाए, फिर भी ये है श्रद्धान। भाई ऐसा ही श्रद्धान के अपने भीतर नहीं आ सकता, आ सकते हो, मैं करता हूं, गलत कुछ हुआ इनने करो उनने करो या सो होगा ऐसे यहां होगा हो गलती, वो अच्छा कुछ हुआ तो उसका श्रेय फौरन लेने तैयार, मैंने किया था। ये जो कर्तापने का भाव है और स्वामीपने का पजेशन का भाव, यही भाव तो अपन को श्रद्धा में बाधक बन रहा है। अपन धीरे धीरे इस दबाव को कम करें अपने ऊपर तो अपने भीतर वास्तविक श्रद्धा, जिससे कि अपना कल्याण होगा, उत्पन्न होगी। आज अपन श्रद्धा के बारे में उपसंहार करते हुए अब अपन ज्ञान के बारे में शुरू करेंगे, समझेंगे। पर अपन को श्रद्धा अपने भीतर उत्पन्न करनी चाहिए, तभी ज्ञान और चारित्र दोनों सार्थक होते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तब शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़िया में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हूँ फल घड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादाने क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें
शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदके चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई
नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महं यजे।
मुझे आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूम सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य अर्पित।
मिथ्या काम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी गे
द्रव्य ज्ञान वेखो मंदे विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है।
अनुभवताए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जनवाणी है।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो तू हे जिन वाणी भारती तो ये जपो जिन रैन जो
और सदा चरण से जिसका जीवन समन्वित है युक्त है उसका जीवन ही अच्छा बनता है या वही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। दृष्टि की निर्मलता या सच्ची श्रद्धा कैसे प्राप्त हो अभी अपन इस बात पर विचार कर हमारी दृष्टि कैसे बदले। हमारी दृष्टि में से भ्रम और संदेह कैसे दूर हो ताकि हम संदेह से रहित सच्ची दृष्टि प्राप्त कर सके। जरूरी है कि जो दृष्टि से संपन्न है उनके चरणों में बैठा जाए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाए। अपने को दो बातें अगर सीखना होती हैं तो जिसको वो बातें मालूम है उसके चरणों में जाकर बैठते हैं उसकी कृपा कैसे होगी इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं और जैसे ही कृपा पूर्वक सामने वाला हमें जिन दो बातों को जानना चाहते थे वो दो बातें बता देता है तो अपन कृतकृत हो जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। ऐसे ही जिसे अपने जीवन के लिए सच्ची दिशा चाहिए अपने जीवन के लिए एक भ्रम से रहित संदेह से रहित वेतर्क और बेशर्त दृष्टि चाहिए सच्ची दृष्टि चाहिए उसे भी अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करना होगा। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने अकेले से नहीं होगा। उन्होंने जिस तरह अपन को उपाय बताया है उस उपाय को जो अपन करेंगे तब दृष्टि की निर्मलता हासिल होगी। आचार्य भगवंतों ने सच्चे देवगुरु शास्त्र ने अपन को क्या उपाय बताया एक ही अपने जीवन में प्रयोजनभूत क्या है इसको अपन समझें क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। इदम करणीयम इदम न करणीयम इदम आचरणीयम इदम ना आचरणीयम ये विवेक अपने भीतर हो कि ये हेय है ये उपादेय है मुझे यह करना चाहिए इससे मुझे वरन बचना चाहिए। व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति यदि स्पष्ट दृष्टि है कि मुझे प्राप्त करना है वितरागता को शुद्धता को तो मेरा संकल्प किस बात का हो लगाना है, ये मेरा संकल्प है। और बचना किससे है? मुझे अशुभ कार्यों से बचते रहना है। अगर इतना छोटा सा उपाय, जैसा कि आचार्य भगवंतों ने हमें दृष्टि की निर्मलता के लिए, अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए बताया है, हम उसको फॉलो करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हम इस बात के लिए संकल्पित हो कि जब भी मन, वाणी और शरीर से हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे, और बचने की कोशिश करेंगे निरंतर पापों से, कषायों से, अशुभ से। और मेरा लक्ष्य तो शुद्ध है, वीतरागता है। अगर इस तरह का अपने जीवन में विचार आता है तो धीरे धीरे यही विचार अपनी दृष्टि को निर्मल करने में सहयोगी होगा, यही प्रयोजनभूत है। एक बार एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा था, दरवाजे बंद थे, खिड़की जरूर खुली थी, रोशनी आ रही थी, हवा भी आ रही थी। अचानक क्या हुआ कि उस खिड़की में से, खुली हुई खिड़की में से एक चिड़िया भीतर आई। तो चिड़िया भीतर आई किस काम के लिए? कुछ खाने मिल जाए। वो खोजती रही कमरे में खाने पीने की सामग्री। जब उसे जो सामग्री प्राप्त करना थी वो प्राप्त कर ली, तो उसने सोचा अब चलना चाहिए। लेकिन चलें कैसे, दरवाजा तो बंद है। वो दीवारों से टकराई, छत से टकराई, दरवाजे पर चोंच मारी, बंद ही है। मैं तो यहां आकर के, उसने सोचा कि मैं तो इस कमरे के भीतर आके फंस गई, अब निकलूं कैसे। वो जो व्यक्ति कमरे के भीतर बैठा था वो उसकी अज्ञानता पर हंस रहा था कि देखो तो इस चिड़िया को इतनी बुद्धि नहीं है कि जहां से खिड़की में से आए हो तहीं से निकल जाए। उसको तो मन में चिड़िया को यह लग रहा था कि जिस खिड़की से आकर के मैं इस कमरे में फंस गई हूं उस खिड़की से निकल कैसे सकते। बड़ा लॉजिकल है उसका सोचना भी, ठीक तो है। जिस खिड़की ने मुझे इस कमरे में फंसा दिया है उस खिड़की से तो मैं निकल करके मुक्त नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वो अन्यत्र से निकलने के लिए प्रयत्न करती रही और अपने प्रयत्न में असफल रही। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की उसको उड़ाने की कि खिड़की में ही बता दिया उसको कि देखो कैसे निकल जाओ, लेकिन वो तो और घबरा गई। अपन जैसे कि चिड़िया वगैरह को अपन भगाए तो वो तो और उल्टी भागती है, डर जाती हूं कि कहीं ऐसा ये पकड़ तो नहीं रहा हमारे लिए। ऐसे उसके साथ हुआ। थोड़ी देर के बाद उसका विवेक जागृत हुआ कि ठीक तो है, मैं जिस दिशा में कमरे के अंदर आकर के फंस गई हूं, अगर उससे विपरीत दिशा में चलूं तो खिड़की से बाहर और इस कमरे से मुक्त हो सकती हूं। इतनी सी ही बात थी। जिस मोह के कारण मैं इस संसार में फंस गया हूं, अगर वही मोह मैं छोड़ दूं तो संसार से मुक्त होने में बड़ी आसानी होगी। इतनी छोटी सी चीज, जिस कर्म के करने से मैं निरंतर कर्मों के बोझ से दब रहा हूं और संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा सह रहा हूं, अगर मेरे विवेक में, मेरी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाए कि जिस कर्म और मोह के द्वारा मैं इस संसार में पीड़ा सह रहा हूं, अगर वही मोह धीरे धीरे कम कर दूं या उसे छोड़ दूं तो मैं आसानी से निकल सकता हूं। चिड़िया तो कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन हम तो आज दिन तक इस संसार से मुक्त नहीं हो पाए। हमने अपनी मुक्ति का उपाय तक नहीं किया। मुक्त नहीं हो पाए ये तो ठीक है, लेकिन हमने मुक्ति का उपाय नहीं किया, बल्कि संसार में भौतिक सुखों में फंसकर अपना संसार ही बढ़ा दिया है।
सुबह से शाम तक एक ही लगन अपने भीतर लगी रहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्जित कर लूं, कैसे धन संचय कर लूं, जो संचित है उसे कैसे बढ़ाऊं और जो संचित है उसका संरक्षण कैसे करूं। अर्जन, संवर्धन और संरक्षण में परिग्रह के ही अपन लगे हुए हैं। राग द्वेष परिणाम अपने निरंतर चलते रहते हैं। बताइए, इन परिणामों के चलते क्या मैं ठीक दिशा, जो मुक्ति की तरफ मुझे ले जाएगी, जो मुझे दृष्टि को निर्मल करेगी, जो मेरे जीवन को अच्छा बनाएगी, क्या प्राप्त हो जाए? नहीं। अगर हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि हम ऐसे कर्म न करें जो कि हमें संसार के दुखों को ही देने वाले हो। जितने भी कर्म हैं सब संसार के ही दुख देते हैं, अपने जब फल देते हैं वो। मैं ऐसा कर्म करूं जो मुझे कर्मों से मुक्त कर दे। देखो, भगवान ने किया तो वो अपने समस्त अंतरंग के 8 कर्मों से मुक्त हो गए। ऐसा कर्म किया कि कृतकृत्य हो गए, अब करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसी दृष्टि जिसकी निर्मल है वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सम्यक दर्शन सुद्धा नारद तिर्यक नपुंसकस्थानी दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रताम न वजंती नाप व्रतिका। अब व्रती भी हो, जिसने कोई व्रत नियम न लिया हो लेकिन दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है, सम्यक दृष्टि है, तो क्या कहते हैं, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वो नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, दुष्कुल में पैदा नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा। इतनी सारी चीजें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होते ही प्राप्त हो जाती। ऐसा नहीं समझना कि जो व्यक्ति धनवान है वो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है, ऐसे धोखे में नहीं रहना। लेकिन जो व्यक्ति दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है वो व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा। दरिद्रता धन पैसों की दरिद्रता नहीं है भैया। महाराज अभी कह रहे थे, अपन जरा दरिद्रता देखें कि जो अपनी आत्मा से बेखबर है वो तो दरिद्र है। सो अपन सब भी दरिद्रता की कोटि में आएंगे। जो जो आत्मा की रुचि नहीं रखते हैं, जो अपने आत्मा के कल्याण के बारे में दिन भर में जरा भी विचार नहीं करते, संपन्न तो वो है जो निरंतर अपनी आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं, या कि जिन्होंने अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर लिया, संपन्न तो वो ही है, अरंत और सिद्ध भगवान। रोज रोज अपन की पूजा वंदना करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा झुकाते हैं कि आप बहुत संपन्न हो भैया। अपन ने कोनो धनवान को नहीं बिठा लो वेदी पे, जिन्होंने धन छोड़ दिया उनको वेदी बिठा दिया। इसका मतलब है कि दरिद्रता का और संपन्नता का अर्थ पैसे से नहीं है, दृष्टि से है। विकलांग नहीं होगा, जरा सोचे, जो व्यक्ति अपने पूरे अंग 8 सही नहीं पा पाया, उसने क्या किया होगा? कम से कम दृष्टि की निर्मलता तो हासिल नहीं की होगी, जिससे कि कर्म के उदय से ऐसी पर्याय प्राप्त हुई। अगर इस तरह अपन विचार करके, इसलिए नहीं, देखने के लिए नहीं कि कौन कैसा है, मैं दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हूं तो इन सब चीजों को नहीं पाऊंगा, लालच नहीं दे रहे कि आप इसलिए पाओ ताकि, जैसे अपन बच्चों को कहते कि हम तुम्हें आपके अच्छे नंबर आए तो साइकिल दिला दें, तो ऐसा थोड़ू भैया। अगर दृष्टि की निर्मलता हमारे पास होगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप प्राप्त होने वाली चीजें हैं, अपने भीतर ही अपने स्वभाव में ये सारी चीजें प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन हम स्वभाव को ही भूले हुए हैं। दृष्टि की निर्मलता हमें स्वभाव से परिचित करा देती है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन अपने लिए प्राप्त करने योग्य है। उसके गुणगान आचार्य भगवंतों ने तो यहां तक गाए हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृह श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बताइए, फूल करके कुप्पा हो सकता है इस गाथा को पढ़ करके सामान्य श्रावक, गृहस्थ के लिए मोक्ष मार्गी कह रहे हैं और मुनि महाराज मोक्ष मार्गी नहीं है। अगर गृहस्थ मोह से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है, सम्यक दर्शन से संपन्न है, और मुनि महाराज जी जिनके भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, दृष्टि की निर्मलता नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। तो गृहस्थ शेव गृहस्थ श्रेष्ठ है मोहिनो मुनि, जिस मुनि पर्याय में प्राप्त करने के बाद भी आपने जो प्राप्त करने योग्य चीज थी सम्यक दर्शन, वह प्राप्त नहीं किया तो आपका मुनिपना श्रेयस्कर नहीं है। उससे तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले गृहस्थ को श्रेष्ठ माना। भैया, इस गाथा को पढ़ करके और अगर गृहस्थ अपने आप को बहुत ऊंचा मान लेवे और अहंकार कर लेवे तो उसका तो पता नहीं होगा। इसलिए लिए नहीं लिखा, प्रशंसा करते हुए लिखा कि देखो एक गृहस्थ भी दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हो सकता है, उस प्रशंसनीय है। तो गृहस्थ अपनी प्रशंसा सुनकर के क्या विचार करे कि देखो अगर मैं दृष्टि से संपन्न हूं तो मेरी प्रशंसा हो रही, अकेले दृष्टि से संपन्न होने पर मैं आत्मज्ञान और सदाचरण के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को और अंगीकार कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसी तरह मोक्ष के लिए जिसने ज्ञान प्राप्त किया, आचरण भी जिसने अच्छा कर लिया बाहर से, लेकिन भीतर में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा या वीतरागता के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई, ऐसे मुनि महाराज जी के लिए उपदेश दे रहे हैं कि भैया सब तो करो, इतना त्याग किया, घर गृहस्थी छोड़ी, इतनी तपस्या कर रहे हो, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा टटोलो भीतर कि मैं श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूं, मैं अपने कर्मों की निर्विराग के लिए कर रहा हूं, मैं अपने वीतराग स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं कि सिर्फ अपने नियम और प्रेम के लिए कर रहा हूं कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने और लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा माने, इसके लिए कर रहा हूं। अपने आत्म कल्याण के लिए अगर कर रहा हूं तो मैं निर्मोह होकर के श्रेष्ठ हो जाऊंगा। अपन को इस गाथा का अर्थ ऐसा लेकर दोनों जन को, दो ही है मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ में अगर अपन देखें तो मुनि महाराज और श्रावक श्राविका, आरिका माता जी तो मुनि के समान ही महाव्रतों को उपचार से पालन करती है, श्रावक पहली प्रतिमा से लेकर के और ग्यारहवीं प्रतिमा को पालन करने वाले घर में ही रह करके दसवीं प्रतिमा तक अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं। लेकिन इस सब के पीछे मेन चीज क्या है? मेरी दृष्टि की निर्मलता। ये सब करने के बाद भी, पांच महाव्रत ग्रहण करने के बाद भी मेरे भीतर मिथ्यात्व तो नहीं पड़ा, नहीं तो मैं अपना कान अपने हाथ से पकड़ूं, कोई और से नहीं पकड़वाने का है, अपने हाथ से अपना कान पकड़ के भैया अपने को संभाल लूं। मैंने इतना सब कुछ किया, पांच महाव्रत अंगीकार किए, लेकिन मेरे भीतर से मोह गया नहीं, मिथ्यात्व गया नहीं, मुझे तत्व का जैसा स्वरूप है उस पर श्रद्धान नहीं हुआ। सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर भी मेरा बाहरी बाहरी श्रद्धान है, अंतरंग में मुझे वीतरागता और कर्मों की निर्जरा प्राप्त करनी चाहिए थी, वो तो पाठ ही नहीं किया, संसार के ही प्रपंच में मैं उलझ करके रह गया, ऐसा विचार करे अगर, तो अपने जीवन में इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महार्था दर्शन पूता, आपके थोड़ा सा भूल गया हूं, मानव तिलका वंती दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से युक्त है, दृष्टि की निर्मलता से युक्त है, वो सब चीजें आपो आप प्राप्त कर लेता है। उसे देवों के इंद्र पद को भी प्राप्त करने की क्षमता है, वो मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र चक्रमयी मान ममेय मानम, वो धर्म चक्र को धारण करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध चक्र को भी, अर्थात सिद्धों के समूह में स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त करके शामिल हो सकता है। इतनी योग्यता दृष्टि की निर्मलता में, अपन कहां भूले हुए हैं, अपन बाह्य आचरण में ही भूले हुए हैं, अपने अंतरंग के परिणामों को संभालने का अपना विचार ही नहीं आता है। आना चाहिए कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं बाहर से काहे के लिए कर रहा हूं, मैं अपने अंतरंग के परिणाम संभालने के लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे को बताने के लिए मैं आचरण नहीं कर रहा हूं कि मैंने 10 उपवास करे थे, 10 लक्षण पर करे होंगे, हमें क्या हो तुम्हारे 10 उपवास से क्या मिलने। आपने अपने कर्मों की निर्दयता के लिए उपवास किए थे, आपने जो व्रत नियम का पालन किया है, आपने जो सदाचरण का पालन किया, अपने कल्याण के लिए किया कि संसार को दिखाने के लिए, ऐसा विचार करते समय अपने मन में आवे और अपना ध्यान अपनी दृष्टि वितरागता की तरफ हो, तो वही तो दृष्टि की संपन्नता है। 8 गुण होते हैं, जब देवों में पहुंच करके कोई दृष्टि की संपन्नता से युक्त जीव जाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, अणिमा महिमा इत्यादि विद्यों से संपन्न हो जाता। अणिमा रिद्धि वो कहलाती है जिसमें कि अपने शरीर को विक्रिया के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म बनाने की क्षमता आ जाती। महिमा रिद्धि वो कहलाती जिसमें कि अपने शरीर को इतना स्थूल, अपन पढ़ते हैं ना कि जब लंका में हनुमान जी गए थे, विद्याधर थे, उनने अपने शरीर को अणु के समान छोटा सा बना करके और छेद में से लंका के दरवाजे के उसमें से घुस गए थे, ऐसा पढ़ते हैं अपन। ये सब चीजें कैसे प्राप्त हो गई, लगती तो अच्छी है तुम्हें मिल जाती, ऐसे कैसे मिल जाती भैया, कहूं भरी थोड़ी है, कहूं बिकट थोड़ी है कि अपन रुपया पैसा खर्च करें तो अपन को ऐसी अनिमारिद्धि मिल जाएगी। अरे अपनी तपस्या से, अपनी दृष्टि की निर्मलता से अपने आप प्राप्त होने वाली चीजें हैं। महिमा रिद्धि वो है जैसे कि अंगद दरबार में पहुंच करके अपना पैर कहा कि उठाओ, बड़े से बड़े योद्धा आए थे लेकिन पैर को टस से मस नहीं कर पाए, ये क्या चीज है, ये महिमा रिद्धि है कि इतना स्थूल इतना भारी कर लिया अपने शरीर को कि उसे कोई विचलित ना कर सके। लघिमा रिद्धि इतना हल्का बना लिया अपने शरीर को कि जैसे रुई यहां से वहां हवा चलने से उड़ सकती है, इतना शरीर हल्का हो गया। प्राप्ति रिद्धि वो कहलाती है जिसमें कि यहां बैठ करके भी, और अपन जिनको मुनि महाराज को ये प्राप्त है, उस प्राप्ति रिद्धि के माध्यम से सूर्य के विमान को भी बिना अपोलो या बिना विमान में बैठे हुए यहीं से अपना हाथ बढ़ा करके छूने की क्षमता प्राप्त हो जाती। अपन इतने उपाय करेंगे जब भी नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी सी तपस्या दृष्टि की निर्मलता अगर अपने पास में है तो ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है, बताइए। और प्राकाम्य रिद्धि वो कहलाती जैसे कि इंद्रप्रस्थ भवन बनाया था दुर्योधन ने, पानी ऐसा दिखता था कि जमीन है, और जमीन ऐसी दिखती थी जैसे पानी भरो, सो दुर्योधन जब चलने लगे तो उनको लगा कि आगे तो जमी नहीं है, तो जैसे ही आगे चले सोते तो पानी भरो तो सो गीले हो गए कपड़ा। सो जब आगे बढ़े तो उनने देखा कि ऐसा फिर से धोखा ना हो जाए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। सो समर समर के चले, तो जहां फर्श था वहां पर भी अपनी धोती ऊंची करके चलन लगे। सो लोग हंसे, कहने का कर रहे इतने कौन पानी आ है वो प्राकामी, वो कहलाती कि पानी पर पृथ्वी के समान और पृथ्वी पर जल के समान चलने की क्षमता प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं, वशित्व और ईशत्व वृद्धि भी प्राप्त दृष्टि की संपन्नता से हो जाती, सारे तीनों लोकों को वश में करने की क्षमता हो जाती। अरे भैया, सबको वश में करने की क्या आवश्यकता, लेकिन क्षमता ऐसी प्राप्त हो जाती जिसने अपने इंद्रिय और मन को वश में कर लिया, अपने हाथ को वश में कर लिया, उसके वश में तो सब जीव हो जाएंगे, सारा लोक उसके चरणों में डला हुआ है। ऐसे वशित्व वृद्धि को प्राप्त हो जाता, ईश्वत्व जिसमें कि सब लोग उसे ही अपना प्रभु मानते हैं, उसके ही चरणों में तीनों लोक झुका हुआ है, ऐसे ईशत्व को प्राप्त कर लेता। मन चाहे रूप को बनाने की क्षमता, जिसको अपन काम रूपित्व कहते हैं, यह भी दृष्टि की निर्मलता से प्राप्त हो जाती। कितने गुण गाए जाएं, दृष्टि की निर्मलता के उतने ही कम हैं। आपको इसलिए आवश्यक हो गया बताना, क्योंकि अपन तो चमत्कार में विश्वास मानते हैं, अपनी श्रद्धा उसी में ज्यादा बढ़ती है कि थोड़ो सो हलवा पूरी लड्डू हाथ पे आ गया सो चमत्कार होगा, थोड़ी सी राख आ गई सो चमत्कार होगा। इसको चमत्कार मानते हो या कि अपने आत्मा में प्राप्त होने वाली शक्ति को चमत्कार मानेंगे? ये डिफरेंस अपन को अपने विवेक से, दृष्टि की निर्मलता से स्वयं करना है, दूसरे के द्वारा नहीं होगा। एक व्यक्ति था, आखिरी बात सुना करके खत्म करूं फिर अपन करेंगे चर्चा। एक व्यक्ति रस्ते से जा रहा था, कांच का सामान खरीदा था, सो सबरा कांच का सामान पकड़े था और चला जा रहा था। किसी व्यक्ति का धक्का लगा, धक्का लगने से वो तो नहीं गिरा, लेकिन कांच का सब सामान जमीन में गिर गया। अब कांच का सामान है तो कांच की नजाकत इसमें है कि गिरे और टूट जावे, न पथरा और कांच में का अंतर भाव है। तो कांच का सामान था तो नीचे जमीन पर गिरा तो सब टूट गया, सबरा सामान टूट गया, सो चुपचाप वहीं पर खड़े हो गया वो। अब सारी जनता भीड़ इकट्ठी हो गई उसके आसपास, उसने क्या कहा उस जनता से, क्या मेरे से पहले तुमने किसी मूर्ख को नहीं देखा?